छठवां भाग गीत काव्य की दृष्टि से नवम सर्ग। जब हमारी व्यक्तिगत अनुभूति भावावेश में संगीतमय होकर कोमल कांत पदावली के माध्यम से व्यक्त होती है तो उसे ही हम गीत कहते हैं। श्री महादेवी वर्मा के अनुसार सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का विशेष गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। डॉक्टर त्रिलोकी नारायण दीक्षित के शब्दों में गीत काव्य में संगीत की चरम अभिव्यक्ति रहती है। प्रत्येक गीत स्वतः पूर्ण होता है। सफलता, कोमलता तथा मधुरता इसके आवश्यक तत्व होते हैं। ये जीवन के एकांत क्षण और सूक्ष्म रस्म के चित्र होते हैं। इनके छंदों एवं शब्दों का चयन कवि की इच्छा पर निर्भर रहता है, परंतु फिर भी संगीतात्मकता का होना आवश्यक है। साकेत विविध छंदमयी नाद सौंदर्यपूर्ण एवं लय तान युक्त संगीतमयी रचना है। उर्मिला की वैरहवथा में गुप्त जी का मानस तदाकार हो गया है, अतः उनके समस्त भावों एवं विचारों में उर्मिला की व्यथा को वाणी मिलती है। गीतों के माध्यम से उर्मिला के चरित्र में निखार लाने में गुप्त जी को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। साकेत के नवम सर्ग में वर्णित गीत प्राचीन तथा आधुनिक पद्धतियों पर लिखे गए हैं। इस सर्ग का प्रथम गीत चित्रकूट वर्णन में लिखा गया है, जिसका टेक है ओ गौरव गिर उच्च उदार। इस गीत के अंतर्गत कवि ने चित्रकूट पर्वत की प्राकृतिक सुषमा का सजीव चित्र अंकित किया है। कवि ने यहाँ पर्वत पर स्थित ऊंचे ऊंचे झाड़ों, विविध जीवों, बादलों को देखकर नाचते हुए मयूरों, बसंत ऋतु के कारण विकसित कुसुमों, कंदमूल फल से युक्त विपिनों, सुमधुर झरनों तथा प्राकृतिक सुषमा से सुसज्जित श्रृंगों का वर्णन किया है। तुझ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, तने पत्रमय छत्र पहाड़। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्रमय छत्र पहाड़। क्या अपूर्व है तेरी आड़, करते हैं बहुजीवन विहार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। तू निर्झर का डाल दुकूल, लेकर कंद मूल फल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल, खड़ा खोल दरियों के द्वार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। इसके अनंतर जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी नामक गीत अंकित है। इस गीत में कवि ने उर्मिला के बाल्यावस्था एवं युवा जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करते हुए भावी जीवन की आशाप्रद चित्र अंकित किया है। आगे जीवन की संध्या है, देखें क्या हो आली, तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली। सिर आँखों पर क्यों न कुमुदनी, लेगी वह पदलाली, किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ यह चेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। इस गीत में वीरा दग्ध उर्मिला फिर प्रभात होगा जिसे भावों से अपनी भावी जीवन में आशा का संचार करती है। इस गीत में प्रेरक भाव प्रेम है, जैसे संध्या कुमुदनी को विकसित कर देता है, उसी तरह उर्मिला को भी लगता है कि मेरा जीवन संध्या भी कुमुदनी की तरह खिल जाएगी। इसके बाद वेदने तू भी भली बनी गीत अंकित है। यह गीत संबोध गीत पद्धति मिश्रित पद पद्धति में पर लिखा गया है, परंतु इसमें आत्मनिवेदन न होकर वैयक्तिक अनुभूति का ही प्राधान्य है और वेदना का सांगोपांग निरूपण किया गया है। यह सत्य है कि वेदना अभाव से उत्पन्न होती है, परंतु कवि ने अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी कहकर अभाव को उसका पिता तथा अदृष्ट को उसकी माता के रूप में माना है। कवि की यह कल्पना बड़ी मनोरम एवं मार्मिक है। वेदने तू भी चली बनी, पाई मैंने आज तुझे में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विसिख अनी, ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दिगम सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदिष्ट जनी। इस गीत में लय और तान की दृष्टि से नाद सौंदर्य विद्यमान है और भावानुकूल शब्दों का चयन हुआ है, लेकिन कुछ क्लिष्ट शब्दों जैसे दृगुम्बुसनी, अदिष्ट जनी, उपमोचितस्तनी शब्दों के कारण गीत की सुकुमारता एवं मधुरता नष्ट हो गई है। इसके पश्चात आजा मेरी निंदिया गूंगी गीत की सृष्टि हुई है। उर्मिला को अपने प्रिय लक्ष्मण के दर्शन जागृत अवस्था में होना तो दुर्लभ प्रतीत होता है, अतः वह स्वप्न का आश्रय लेती है। वह व्यथित अनेक प्रलोभनों को देकर रात्रि का आह्वान करती है, जिससे कि वह निद्रा देवी की गोद में शांति के साथ सो सके तथा अपने प्रिय का दर्शन कर सके। इससे ज़्यादा वह क्या चाह सकती है। आ जा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंद्र खिलौना दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, अर्ध चंद्र ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी। आ जा मेरी निंदिया गूंगी। आगामी गीत स्नेह जलता है यह बत्ती, मन को यो मज्जी तो मैं तीव्र अनुभूति एवं वेदना व्यथा वेदना की विवृत्ति में तो सौंदर्य है, परंतु तुकबंदियों के कारण अभिव्यक्त में शिथिलता आ गई है। आगामी गीत कहती मैं चातक फिर बोल की रचना संबोध गीत पद्धति मिश्रित पद पद्धति पर हुई है। इस गीत में हृदय की गहन अनुभूति संवेदना के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि चातकी और उर्मिला की स्थिति एक सी है। उर्मिला जानती है कि चातकी की बोल की कीमत इन खारी आंसुओं से नहीं चुका सकती, फिर भी वह उससे मधुर झाड़ी में बैठकर मधुरता खोलने की कल्पना करती है। कहती मैं चातक फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि मोल, कर सकते हैं क्या मोती उन बोलों की तोल, फिर भी उस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल। आगामी गीत मेरी ही पृथ्वी का पानी की रचना प्रगीत पद्धति पर हुई है। इसमें कल्पना की मनोहरता के साथ साथ संगीतात्मकता भी विद्यमान है तथा विरहणी के सुख विलास की मादक स्मृति ने इस गीत में सरसता का संचार कर दिया है। विरहणी होते हुए भी उर्मिला को प्रकृति का रम्य रूप ही प्रिय है। अश्रुओं को घन सदृश देखकर उनके प्रति उसे सहानुभूति हो जाती है और वह उनसे बरसने का अनुरोध करती है। बरस घटा बरसू मैं संग, सरसे अवनी के सब अंग, मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साथ सयानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। जहाँ दरसो घन बरसो गीत में कवि का मानवतावादी स्वर सुनाई पड़ता है, वहीं सख छिन धूप और छिन छाया में लोकोक्ति के आधार पर मानव मन को सांत्वना दी गई है। निरख सखी ये खंजन आए गीत में उर्मिला को लगता है कि उसके प्रियतम ने उसकी शुद्ध करके अपनी आँखों को उधर फेर दिया है। निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। निरख सखी ये खंजन आए, भावों की सुकुमारता, अनुभूति की तीव्रता, भाषा शैली की मनोरमता एवं कल्पना की गहनता के कारण यह गीत अनुपम है। सखी निरख नदी की धारा ध्वन्यात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अनुपम है। शरदकालीन सरिता के मनोहर रूप को देखकर उर्मिला मुग्ध हो उठती है और उसकी वाणी से भी नदी की कलकल ध्वनि सदिश मधुर गीत उठता है। सखी निरख नदी की धारा ढलमल ढलमल चंचल चंचल अंच झलमल झलमल तारा निर्मल जल अंतस्थल भर के उछल उछल कर छल छल करके थल थल करके कल कल करके बिखराता है पारा सखी निरख नदी। ढलमल ढलमल चंचल अंचल में नदी की तरंगित जल का दृश्य साकार हो उठा है, साथ ही तारों का प्रतिबिंब भी मूर्तिमंत हो गया है। कुल मिलाकर गीत में मोहकता और मधुरता के साथ एक अपूर्व प्रभावोत्पादकता एवं जीवंतता है। हम राज्य के लिए मरते हैं की रचना प्रगीत पद्धति पर हुई है। इसमें भारतीय किसानों के सुखी जीवन की मनोरम झांकी चित्रित है। सिसिर न फिर गिरवन में गीत में उर्मिला के विरह व्यथा का तीव्र अंकन हुआ है। पतझड़ के सारे गुणों का आरोप अपने जीवन के पतझड़ में कर रही है। सिसिर न फिर गिरिवन में जितना मांगे पतझड़, दूंगी मैं निज नंदन में कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अब क्या भाव आनन में। तत्पश्चात काली काली कोयल बोली होली 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 गीत की रचना हुई है। यह गीत प्रगीत पद्धति पर लिखा गया है जिसमें सरलता तरलता मधुरता एवं कमनीयता है लेकिन अभिव्यक्ति की सरसता नहीं है। इसके पश्चात मुझे फूल मत मारो सुंदर एवं सुप्रसिद्ध गीत है। यह गीत विद्यापति के कतन वेदन मोह देशी मदना के आधार पर लिखा गया है। इसमें मनोरम कल्पना लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता के साथ समरसता मधुरता एवं संगीतात्मकता के तत्व विद्यमान हैं। उर्मिला वसंत से विनती करती है कि हे कामदेव, मुझे अबला और विरहणी जानकर काम विदग्ध मत बनाओ। यदि तुम मुझे कष्ट ही देना चाहते हो तो सुन लो, तुमको विफलता ही प्राप्त होगी। अरे कंदर्प, तुझे यदि रूप का दर्प है तो मेरे प्रति तुझसे अधिक रूपवान है। उन पर इसे न्योछावर कर दे, ले मेरी चरण धूलि और अपने पत्नी रति पर डाल दे। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, तुम जो जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रथ के सिर पर धारो। इसके पश्चात देखूं मैं तुझको सविलास, खिल सहस्त्र दल सरस सुवास, ओ मेरे मन के हास, अरि गुजती मधुमक्खी, मान अरि, सख बिखर गई है कलियां, ओ कोयल यह कौन कूक। गीत में सहानुभूति एवं संवेदना की अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रकृति की मनोरम छटा भी विद्यमान है। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। प्रगीत में सरलता एवं सुकुमारता की सजीव अभिव्यक्ति हुई है। उर्मिला के एक कर्तव्य परायण नारी है, अतः वह अपने पति को किसी भी स्थिति में कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होने दे सकती, अतः अपने व्यक्तित्व के अनुरूप वह गा उठती है। सखे जाओ तुम हंसकर भूल रहूं मैं सुध करके मोती करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती। मानती हूँ तुम मेरे साध्य अहर्निश एकमात्र आराध्य, साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूँ या सोती, तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती। यही आता है मन में। प्रगीत में विरह विवलता आवेग की प्रबलता और अभिलाषा की तीव्रता के साथ साथ उत्खंठा अविच्छिन्न उन्मत्त भावना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है रसमन में। मेरे चपल यौवन बाल गीत में विरहणी की उत्कट आत्मसमर्पण की भावना सर्वस्व त्याग एवं सहनशीलता का निरूपण हुआ है। भावानुकूल शब्दों एवं कलापूर्ण अभिव्यक्ति के कारण यह गीत अधिक सरस एवं मार्मिक है। लाना लाना सखी तूली गीत में उर्मिला अपने हृदय की व्यथा को चित्रों में मूर्त कर उसका भार हल्का करना चाहती है। चित्र निज को भूलने का सबसे अच्छा साधन है, अतएव वह सखी से तुलिका लाने के लिए आग्रह करती है। जब जल चुकी विरहणी वाला, बुझने लगी चिता की ज्वाला, तब पहुंचा विरही मतवाला, सती हीन ज्यों भूली, लाना लाना सखी तूली। नौम सर का अंतिम गीत है हे मेरे प्रेरक भगवान। इस गीत में उर्मिला अपने प्रिय के ध्यान में तल्लीन रहने का वरदान मांगती है। हे मेरे प्रेरक भगवान, अब क्या मांगूं भला और मैं फैला कर ये हाथ, मुझे न भूले उनका ध्यान हे मेरे प्रेरक भगवान। नवम सर्ग में मुक्तक पद और प्रगीत तीनों की स्थिति है। कवि का ध्यान केवल उर्मिला की आत्माभिव्यंजना को प्रस्तुत करना न होकर नायिका के विरहाधिक्य का भी वर्णन करना था, अपितु कवि मानस को जो सतत कल्याण कामना में निमग्न रहता है, अनुभूत की तीव्रता और मृदुल कल्पना का संयोग पाकर उद्वेलित हो उठा है, जिससे अनेक गीतों की सृष्टि हुई है। गुप्त जी की कल्पनाएं सार्थक होते हुए भी औपचारिक या लाक्षणिक है, छायावादियों की भांति उन्होंने वास्तविक और भावात्मक कल्पनाओं का प्रयोग कम किया है। इसी प्रकार उनकी पदावली कम कोमल और मधुर होते हुए भी शब्द संगीत और अर्थ निष्पत्ति का सामंजस्य लिए हुए नहीं है। इसी कारण इसके सभी गीत विविध भावों से परिपूर्ण होकर सरसता एवं मार्मिकता में न तो भक्तिकालीन गीतों के समकक्ष दिखाई देते हैं और न छायावादी गीतों के सामने कहीं ठहरते हैं। इसके बावजूद भी भावपूर्ण गीतों के कारण संगीतात्मकता के गुण की श्री वृद्धि हुई है। प्रबंध के क्षेत्र में गीतों की मोहक लड़ी गूंथ देना प्रतिभावान कलाकार के ही वश की बात है। श्री गुप्त जी आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम कोटि के कवि हैं, इसलिए उन्हें अपने इस प्रयोग में इतनी सफलता मिल सकी है। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। द एंड।